मेरी परिस्थिति बड़ी दयनीय है। दयनीय इसलिए है कि आप में से हर एक ने अपने अपने समय का दान मुझे किया है। असल में अब मुझे अपने समय का दान आप सबको करना चाहिए। ऐसी परिस्थिति में मैं हूं। दूसरी बात, मित्रों, मैं इस झमेले में पढ़ने के लिए नहीं आया था। आया था एक व्यक्तिगत काम से, लेकिन एकदम बाढ़ आ जाए और आदमी धारा में बहने लगे, ऐसी मेरी हालत हो गई। तो कहीं तैर कर निकल जाऊं इस कोशिश में मैं था। इससे अधिक मैंने कुछ नहीं किया, इससे अधिक मैं कुछ करूंगा भी नहीं। इसका कारण है कि कुछ करना मेरा शील नहीं रहा है अब तक। और अब तो इस उम्र में मैं अपने शील को बदलूं ये परिस्थिति भी नहीं है, मुझ में ये शक्ति नहीं है कि ऐसी समस्याओं को मैं सुलझाऊं। लेकिन करूं क्या, बापू के जमाने का एक व्यक्ति हूं तो लोग तो बड़े आदमियों की हड्डियों को भी पूछते हैं। मैं हड्डी भी नहीं हूं, मुट्ठी भर राख हूं उस जमाने की। और आप जानते हैं कि राख भी पूजी जाती है, नदियों में बहाई जाती है, घाट बनते हैं। इससे अधिक मेरी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन एक काम मैं करता रहा हूं, अपने दिमाग को साफ रखता हूं और जहां तक हो सके दूसरों के दिमाग को भी साफ रखने में मदद करता हूं। उतना ही काम मैं आज भी करूंगा। पहली बात जो मैं कहना चाहता हूं, वो यह कहना चाहता हूं कि थोड़ी देर के लिए आप हमारे समाज के टेक्सचर, उसके पोत को देखिए। इस विषय में मैं थोड़े नहीं कहूंगा सारी चीजें। जिसे लोग हिंदू समाज कहते हैं वो समाज है ही नहीं, ये मैं हजार बार कहा है, आज उसे दोहरा रहा हूं। यह कई उपसमाजों का समूह भी नहीं है, एक बिखराव है। बहुत से बिखरे हुए समाज हैं इसमें, बस इतना ही है। कभी इसमें से कुछ उपसमाज एक हो जाते हैं किसी प्रश्न को लेकर, कभी किसी प्रश्न को लेकर दूसरे उपसमाज एक हो जाते हैं, और कभी किसी संप्रदाय के साथ मुकाबला हो। संप्रदाय इस देश में, मैं उदाहरण के लिए कहूंगा, तीन हैं, मुसलमान, सिख, ईसाई। कभी उनके मुकाबले में वो इसको एक कर देते हैं। तो इसमें जो कुछ एकता दिखाई देती है वो सारी की सारी अभाव रूप है, नकारात्मक एकता इसमें दिखाई देती है जब विरोध होता है ऐसे समय। अन्य समयों पर ये जीवन में किसी के सामने ठहर नहीं सका अब तक, वेद काल से आज तक किसी समाज के सामने हम ठहर नहीं सके, जिन्हें हिंदू कहते हैं वो लोग। इसलिए अधिकतर दबे ही रहे हैं और बाप दादों का गुणगान करने में ही गौरव मानते रहे। कि एक चीज मेरे मन में है जिसको आप लोगों के सामने साफ कर देना चाहता। दूसरी चीज जिन्हें हम अल्पसंख्या कहते हैं इस देश में माइनॉरिटी, वो तीन प्रकार की अल्पसंख्याएं हमारे सामने हैं। इनमें से एक अल्पसंख्या, एक माइनॉरिटी ऐसी है जिसका अस्तित्व हम मिटाना चाहते हैं, वो है अछूत। हम ये चाहते ही नहीं है कि अछूत रहें, तो अछूतों के लिए आरक्षण का सवाल ही नहीं आएगा। दूसरे हैं आदिवासी। आदिवासियों में और अछूतों में एक बहुत बड़ा भेद है, वो यह है कि आदिवासियों की एक संस्कृति है, अछूतों की कोई संस्कृति नहीं है। उनको हमने कभी संस्कृति में दाखिल ही नहीं किया। ये ऋषि मुनियों की, ये गीता और उपनिषदों की संस्कृति, इसमें उनका कोई स्थान कभी नहीं रहा, आज भी नहीं। और तीसरे हैं ये मुसलमान, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी वगैरह। स्वयं मैं यह मानता हूं कि ये भी नहीं रहने चाहिए, लेकिन इतनी हिम्मत गांधी तक, विनोबा तक किसी ने नहीं की है। विनोबा ने की राजगीर में, लेकिन उससे आगे उन्होंने उसको दोहराया नहीं। होना तो यह चाहिए कि इस देश में और दुनिया में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई ईसाई होगा ही नहीं, संगठित धर्म नहीं हो, ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन। ये मैं बात बहुत नौजवानों की कहना चाहिए, जो उनको कहनी चाहिए, लेकिन मुझे दुख है कि आज का नौजवान रिएक्शनरी है, प्रतिगामी है, प्रतिक्रियावादी है, और वो क्षुद्र क्षेत्रवादी भी है, भाषावादी है, क्षुद्र क्षेत्रवादी है, संप्रदायवादी है, जातिवादी है, जो उसको नहीं होना चाहिए लेकिन है। तो इसमें से हमने हरिजनों को ही क्यों चुना अस्पृश्यों को? इसलिए कि हम अस्पृश्यता का निराकरण करना चाहते हैं, ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं कि अस्पृश्य कोई रहे ही नहीं। तो फिर उस वक्त आरक्षण की आवश्यकता नहीं रहेगी। एक दूसरी चीज जो यहां पर चर्चा हुई, उसमें से जितनी चीजें मुझे याद रह गई हैं उनको पहले कह डालूं। हिंसा और अहिंसा को आप भूल जाइए, ये सिद्धांत मनुष्यों को भुला देते हैं। हम सिद्धांतों से न चिपटे, मनुष्यों को प्यार करें। जितना सिद्धांत से आप चिपटेंगे उतने मनुष्य से दूर जाएंगे और प्यार आपके दिल में से हट जाएगा, कम हो जाएगा। सिद्धांतवादी कठोर ही नहीं, क्रूर भी होता है। तो हम कोरे सिद्धांतवादी न बने। आज जो हो रहा है वो हिंसक प्रतिकार नहीं है मित्रों, वो हिंसा का तांडव है। दंगा और प्रतिकार एक चीज नहीं है। जिसे आप युद्ध कहते हैं वो अलग चीज है, और आज जो हो रहा है वो युद्ध नहीं है। इस फर्क को अगर हम नहीं समझेंगे तो हमारे शांति के प्रयास भी कुछ दोषपूर्ण रह जाएंगे। युद्ध हिंसा नहीं है, युद्ध युद्ध है, उसमें वीरता होती है और शस्त्र प्रयोग होता है। जितनी वीरता अधिक होगी क्रूरता उतनी कम होगी। आज जो है वो उसमें वीरता है ही नहीं, क्रूरता ही क्रूरता है। इसका सबसे भयानक परिणाम यह होता है कि नागरिक भयभीत हो जाता है, इसमें से आतंक फैलता है समाज में, समाज व्यापी आतंक। झगड़ा किसी एक तबके का है, समाज के किसी एक सेक्टर का है, दूसरे तबके के साथ है। आवश्यकता क्या इस चीज की है कि दुकानें बंद हो, इस चीज की आवश्यकता क्या है कि मैं रास्ते से चल रहा हूं तो पुलिस वाला मुझे धमकाए और पीटे। हर आंदोलन न हिंसा की मर्यादा में रहा है न अहिंसा की मर्यादा में रहा है, आंदोलन की मर्यादा में ही नहीं रहा। वो जनता को आतंकित करके अपना उल्लू सीधा करना चाहता है। इस कार्य को मैं शांति कार्य करता हूं और इसमें हम कोई पक्ष नहीं लेते, इसका हम इसे मैं गुण मानता हूं। जनता जहां आतंकित होती है वहां निर्भयता का वातावरण हम पैदा करें, ये सबसे अधिक आवश्यक है। क्या आप समझते हैं कि जितनी समस्याएं हैं उन सब पर हम कोई मत प्रकट कर सकेंगे और करना चाहिए? हम समझते भी हैं। अब ये रोस्टर और रेसिडेंसी ये तो मैं सीखा यहां आकर शब्द क्या है, और इनकी नाइस्टी जिनकी बारीकियां तो अब तक नहीं समझ पाया हूं। जहां आकर ये विद्यार्थी और सरकार रुकी हुई है वो मुकाम तो मेरे लिए ब्रह्म माया इतना ही कठिन मालूम होता है। मैंने मुख्यमंत्री से भी कहा और विद्यार्थियों से भी कहा कि यहां मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, बूढ़ा समझो अकल नहीं चलती। एक ही तुमसे कहता हूं कि तुम एक दूसरे के साथ तो समझो, इसमें सारे समाज को क्यों लपेट रहे हो? इसका कारण है कि प्रतिकार की शक्ति तुम में दोनों में नहीं। उन लड़कों ने मुझसे कहा और उनके अभिभावक ने कहा कि इन लड़कों ने कभी हिंसा का एक शब्द का उच्चारण नहीं किया है और कभी हिंसा का समर्थन नहीं किया है। मैं मानने को तैयार हूं, फिर भी लोग पिट रहे हैं। तो ये लड़के कुछ नहीं कर रहे हैं लेकिन इस हिंसा को रोक भी तो नहीं सक रहे हैं। ये सबसे बड़ी बीमारी हमारे समाज की है कि हम मारपीट को रोक नहीं सक रहे हैं। ये न्याय अन्याय का सवाल ही नहीं है। तुम दोनों पक्ष न्यायी होगे शायद और दोनों की ओर सत्य होगा, लेकिन तुम एक दूसरे को पीट रहे हो, हमको क्यों पीट रहे हो? हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इन नागरिकों ने क्या बिगाड़ा है? वो पुलिस वाला रास्ते चलते आदमी को पीट देता है, चाहे जिस घर में पत्थर फेंक देता है, क्या पागलपन हिंसा है? क्या पागलपन प्रतिकार है? मैं ये कह सकता हूं आपसे कि माधव सिंह ने अभी तक किसी को एक चपत भी नहीं मारी होगी, लेकिन उनके पुलिस वाले वो विक्रम साराभाई के बेटे को भी पीट देते हैं। तो ये क्यों होता है? तुम आंदोलन के नेता हो, उसको रोक नहीं सकते हो। तुम सरकार के नेता हो, पुलिस वाले को नहीं रोक सकते हो। तुम दोनों कमजोर हो और तुमसे ज्यादा कमजोर हम हैं। आपने समस्या को समझा नहीं है मित्रों, इसलिए कहते हो शांति मंत्र मत जपो। कौन सा मंत्र जपे? औरतें अगर हमारी लड़कियां बाहर नहीं निकल सकती तो और कौन सा मंत्र हम जपे? होगा तुम्हारा बड़ा न्याय सब, लेकिन तुम हमको क्यों पीट रहे हो? बैंक में से हमको रुपया नहीं मिलने देते, दुकानों से हमको माल नहीं खरीदने देते, ये कौन सा प्रतिकार है? टेररिज्म है, आतंकवाद है, और ये कमजोरी की निशानी है। दंगा कोई क्रांति कभी नहीं लाता है, दंगा नहीं इंसरेक्शन भी नहीं। इसमें से दोनों की शक्ति क्षीण होने वाली है, चाहे सरकार जीते चाहे ये विद्यार्थी जीते। इसको भी आप समझ लें अच्छी तरह से, हिंसा अहिंसा की मर्यादा को। हम चाहते क्या हैं इस देश में? हमारा मुख्य दोष मानव विमुखता रहा है। इस देश के सारे मनुष्य एक दूसरे से विमुख रहे, इसलिए समाज नहीं बन सका। जाति का मुख्य लक्षण जो दूसरे से दूर रहेगा, यही चाहते हैं जात है क्या? अध्यात्म का मुख्य लक्षण जो सबसे दूर रहेगा और जंगल में जाएगा। कहते भी हैं कि ये आरण्य संस्कृति है, मैं तो कहता हूं वन्य संस्कृति है। इसमें क्या आरण्य संस्कृति है? चिंतन के लिए जाओ, अलग चीज है। ए टैलेंट कैन बी डेवलप्ड इन आइसोलेशन बट नॉट कैरेक्टर। बहुत लोगों ने कहा कि सांस्कृतिक हानि हो रही है, नैतिकता की हानि हो रही है, चारित्र की हानि हो रही है। अवश्य होगी, क्योंकि यहाँ के मनुष्यों में परस्पर अभिमुखता नहीं है, परस्पर विमुखता है। आरक्षण क्या आप अनामत, अनामत रहे या न रहे, इस प्रश्न का निर्णय जिनके लिए अनामत है उनकी राय से कीजिए। ये मुंबई का सवाल जब आया था, महाराष्ट्र में हो या गुजरात में, तो विनोबा ने एक फॉर्मूला कहा कि गुजराती लोग कहें कि महाराष्ट्र में ही रहे और मराठी लोग कहें कि गुजरात महाराष्ट्र में न रहे, तो ये समस्या हल होगी। लेकिन ये कहने की हिम्मत तो दोनों में थी नहीं, दोनों ने नहीं कहा, झगड़ा हुआ। प्रतिकार में से मनुष्य मनुष्य के नजदीक आना चाहिए। आज इतने युद्ध होते हैं, यानी ये हिंसा के युद्ध हैं, असल में युद्ध हो ही नहीं रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी एक दूसरे के कैदियों को छोड़ देते हैं। हमारे कब्जे में कितने कैदी थे पाकिस्तान के, लेकिन उनको हमने मारा नहीं, ट्रीट भी नहीं किया, हमारे यहां किसी तरह की तकलीफ भी नहीं दी, उनको मेहमानों जैसा रखा। युद्ध की भी एक नीति है मित्रों, खेल की जैसे नियम होते हैं युद्ध के भी नियम होते हैं, झगड़े के कुछ नियम तो हों। अनियंत्रित हिंसा क्या है? युद्ध है। ये सारी की सारी परिस्थिति, एक तरफ गुंडे यानी हिंसा जो कर सकते हैं वो, और दूसरी तरफ पुलिस। अब पुलिस की यह हालत है कि डंडा उनका निकम्मा हो गया है, क्योंकि वो सबके हाथ में चला गया, डंडे से अच्छे हथियार भीड़ के हाथ में पहुंच गए, तो उनके पास अब एक ही हथियार रह गया है, बंदूक। अब उसको तो वह चलाए तो इंक्वायरी होती है, तो बंदूक तो चला नहीं सकता, डंडा निकम्मा हो गया है, तो वो क्या करता है, पीटता है। ऐसे लोगों को जिनके हाथ में डंडा वगैरह ना हो और डर आता है, दोनों तरफ से डराने का कार्यक्रम है। अब इस डराने के कार्यक्रम में अगर आप बीच में आते हैं शांति की बात लेकर, तो कौन सी ऐसी काम करते हैं। इसी को लेकर जाइए, इसी पैगाम को लेकर जाइए, हमारी कोई कीमत नहीं है मित्रों, हमको कोई दुनिया में प्रतिष्ठा नहीं चाहिए। जमीन साफ करने की बुहारी और पोतने का पोतना भी लोग हमको समझ लें तो काफी, इससे अधिक कोई हमारी आकांक्षा नहीं होनी चाहिए। कि आप लोग जिस जमीन पर बैठेंगे वो तो साफ हो, कहीं बैठे तो। उन विद्यार्थियों ने मुझसे कहा था कि आप की इज्जत हम करते हैं क्योंकि आप कुर्सी पर नहीं है। मैंने कहा ठीक है, लेकिन जो जमीन जिस पर बैठता हूं वो भी मेरी रहती है कि नहीं पता नहीं। उस जमीन को भी तो रहने दोगे कि नहीं। ये काम है, ये थैंकलेस टास्क है, दोनों पक्ष आपकी निंदा करेंगे, आपको बेवकूफ कहेंगे और आपको निष्क्रिय निकम्मे लोग कहेंगे। ये अगर नहीं कहलाना चाहते हो और समाज में प्रतिष्ठा चाहते हो तो मेहरबानी कीजिए, इसमें दखल देना छोड़ दीजिए। ये हमारा परम कर्तव्य होगा कि इसमें दखल देना छोड़ दीजिए। बहुत स्लेंडर फर्क रह गया है सरकार में और विद्यार्थियों में, इतना कम रह गया है कि उसके लिए दोनों को अड़ जाने की कोई जरूरत नहीं। अब ये हो के ये कह गया है, सत्य नहीं रहा है, मेरा सत्य और तेरा सत्य। तो जब सत्य मेरे और तेरे में बढ़ जाता है तो कोई सत्य रहता ही नहीं। और ये न्याय अन्याय का झगड़ा नहीं है मित्रों, न्याय अन्याय इतनी चीप चीज है क्या। दोनों के कहने में सच्चाई है और दोनों के कहने में कहीं कहीं दोष है। ये कोई अन्याय अन्याय का ऐसा नहीं है। और राम रावण का युद्ध भी जो कहा गया न्याय अन्याय का, वो भी असल में न्याय अन्याय का नहीं था। इतना रावण ने भी सीता को रखा लेकिन कभी अत्याचार नहीं किया, बड़ा सभ्य था। और राम इतने सभ्य मर्यादा पुरुषोत्तम, तो वो शूर्पणखा के नाक कान काट डाले, आपने देखा ना। दोनों पक्षों में ऐसा कुछ होता है, इसलिए बहुत आप न्याय अन्याय और सत्य असत्य की दुआई, हिंसा अहिंसा की, इस तरह से ये डाइकोटमी नहीं है समाज में। इस तरह का समाज हमारा है नहीं। सब में दोष है, सब में गुण है। उन लड़कों के लिए भी हमको प्यार है, लेकिन अगर हटाना है आरक्षण तो उनकी सम्मति चाहिए जिनके लिए आरक्षण है। हटाना आवश्यक होगा क्योंकि ये रहेगा तो वो लोग हमेशा पिछड़े ही रहेंगे, लेकिन कितने दिन रहे। किसी मित्र ने कहा कल, तो हमारे मित्र ने ये भी कहा कि हमारे पाप तो हमारे बाप दादा ने किया, हमको भुगतना पड़ रहा है। मैं सत्यनारायण की कथा करता अगर बाप दादों का ही पाप होता तो। लेकिन ये तो आज भी उनके उनके साथ अत्याचार हो रहे हैं, आज भी वो पानी नहीं भर सक रहे हैं, आज भी स्कूलों में उनके बच्चे बराबरी के साथ नहीं बैठ सकते हैं। एक गांव में गया, मैंने कहा मंदिर में मैं तुमको ले जाता हूं, कहा आप ले जाएंगे, आप कल चले जाएंगे, कल और परसों हम पिटेंगे। ये सही है उनका कहना। एक गांव में हमारे साथी, पुरानी बात है बाप के जमाने की, ये बात तो आज भी ऐसी है, गए गांव में तो वो तो देवता समझे जाते थे, हम लोग देवता समझे जाते थे, लोग हमको आध्यात्मिक जाने क्या क्या समझते थे, तो हमारे चरण छूते थे। लेकिन एक दिन पानी भरने के लिए कुएं पर लेकर गए अछूतों को, तो दूसरे दिन उन्होंने हमारी झोपड़ियां जला दी। ये उस वक्त की बात आज भी हो रही। तो ये पुराना पाप होता तो कोई हर्ष नहीं था, ये पाप कंटिन्यू हो रहा है। अब इसमें गुणवत्ता की थोड़ी हानि होगी, होगी तो होगी। सिर्फ ब्राह्मण था इस देश में, गुणवत्ता गौरी शंकर के शिखर पर थी। अब ब्राह्मण आए शिक्षण में, उनके संस्कृत के उच्चारण सुनता हूं तो मैं परेशान हो जाता हूं। लेकिन क्या इसलिए वो ना आए? गुणवत्ता विलोद विस्प है, एक ऐसी चीज है जो बदलती रहती है, हाथ में नहीं आती। फॉल्स गॉड्स, बहुत से दुनिया में फॉल्स गॉड्स होते हैं, झूठे नकली देवता, उनमें से ये एफिशिएंसी गुणवत्ता ये है। मनुष्यता इनसे श्रेष्ठ है, मनुष्य मनुष्य के नजदीक आएगा, गुणवत्ता की थोड़ी हानि होगी। अंग्रेजों के लिए मेरे मन में बहुत बड़ी बड़ा आदर है, जब से वो चले गए यहां से तब से मेरा दिल कुछ साफ हो गया उनके बारे में। पहले वो उनको समझना मुश्किल था जब तक वो यहाँ के राजा थे, अब उनको समझता हूँ। उस वक्त मैं वहां पर उपस्थित था, वो माउंटबेटन खड़ा होता है, ऐलान कर देता है कि आज से हमारा राज्य समाप्त हो गया। जवाहरलाल नेहरू खड़े होते हैं, राज्य का स्वीकार करते हैं, और फिर वो कहता है कि आज तक मैं राजा का प्रतिनिधि था, जवाहरलाल जी आज से आपका नौकर। वो सिपाही भी था और एक अंग्रेज का अनुशासन, वो हमारा नौकर हो गया जो हमारा राजा था। अब मेरी बहू है वो पब्लिसिटी डिपार्टमेंट में है सरकार के, वो कहती है वो मेरा जो क्लार्क था वो ऑफिसर हो गया है मेरा। तो मैं रोती क्यों है, किसी दिन तो हो नहीं था, वो कभी भी नहीं होगा तुम्हारा ऑफिसर, तो फिर वो वहीं रहेगा, क्योंकि तू ही हो सब उसको, उसको तरक्की देने वाले तो तुम ही हो। एक परिस्थिति का विचार कीजिए आप, अस्पृश्यता निवारण का प्रस्ताव अस्पृश्यों के अछूतों के मत से पास नहीं हुआ, वो किया तो है सवर्णों ने, अस्पृश्यता का आंदोलन तो सवर्णों ने शुरू किया, स्त्रियों के उद्धार का आंदोलन तो पुरुषों ने शुरू किया, लेकिन एक इसमें एक मजा है, जब तक गौरव कब तक है, तब जब तक कि वो हमारी मेहरबानी पर जीते, वो कहते हो कि तूने बड़े उपकार किए, हमको आजादी दे दी, तो दे दी आजादी तो किस काम की छीन मिलोगे। लेकिन जब तक संरक्षित प्रतिष्ठा थी, तब तक तो हम लोग उनको उनकी तरफदारी करते थे। अब क्या है, वो थोड़े थोड़े कॉन्शियस होने लगे, स्त्रियां भी कॉन्शियस होने लगी, अस्पृश्य भी कॉन्शियस होने लगे, दूसरी जातियां भी कॉन्शियस है ना, सेल्फ कॉन्शियस, उनमें अस्मिता जागृत होने लगी। और हमारे देश के इतिहास में ये एक और नई बात रही है जिसकी तरह हमने ध्यान नहीं दिया, अंग्रेजों के जमाने में ये सारी अस्मिताएं दबी हुई थी, तो अंग्रेजों का उस पर जो दबाव था, हुए और दबे हुए सबके समाज में जो लोग दबे हुए और पिछड़े हुए हैं, उनकी अस्मिता का स्वागत होना चाहिए, क्योंकि वो समाज परिवर्तन के लिए अनुकूल। अब उनमें भी जातियां हैं, महाराष्ट्र में महार है, जितने भी फायदे मिले हैं आरक्षण से, अधिकतर महारों को मिले हैं। भंगी को अभी किसी आरक्षण का कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन इसके लिए तो उनको साथ बैठा कर ही करना होगा, इसलिए करना होगा कि ये जो उनमें भेद है, इनके लिए भी जिम्मेवार तो हम ही हैं। अभी कहा गया ना कि वो बख्शी पंच के की 82 जातियां हैं, अब ये इतनी जातियां अगर बख्शी पंच में हैं तो सारे देश में कितनी होंगी, कम से कम 4000 तो होंगी। अब ये 4000 जातियों का देश से मतलब हिंदू समाज, ये तो शतरंज की बिसात है। ये कोई समाज है तो हम क्या कहते हैं कि तुम भी तो किसी को अछूत मानते हो, तो मैं होता तो कहता कि आपसे तो सीखा हूं, आपने जो सिखाया वो चल रहा है, आप इसको बंद करना शुरू कीजिए। सवर्ण एलीट गुणवत्ता के नाम पर अगर अवर्ण एलीट को एक्सक्लूड करेगा तो वो प्रतिगामी कदम होगा, काउंटर रिवोल्यूशनरी। इसलिए मैंने कहा मेरिट इज अ फॉल्स गॉड, जिसने जन्म भर वेद का अध्ययन किया हो, वेद का उच्चारण अगर कोई दूसरा ब्राह्मण भी नहीं कर सकता है उसके अनुसार, तो कौन सी बड़ी बात है, वो करे करता रहे। लेकिन अम्बेडकर को भी संस्कृत सिखाओ, जगजीवन बाबू को भी सिखाओ, और कोई भंगी लड़का हो तो उसको भी सिखाओ। जितना एजुकेशन क्वांटिटेटिव होता है उतना क्वालिटी में थोड़ा ह्रास होता है। ये कीमत है मित्रों प्रगति की, अगर प्रगति करनी है तो थोड़ा ह्रास होगा। फिर इसका उपाय क्या है वो मैं बताता रहा हूं, लेकिन आज तक किसी ने माना नहीं है, आज आप भी मानेंगे आशा नहीं है, लेकिन कह दूं, उपाय यह है कि उच्च वर्णीय नौकरियों का बहिष्कार कर दें। वो उसने गाया है मैथिली शरण ने, शिक्षे तुम्हारा नाश हो, तुम नौकरी के लिए बनी, लो मूर्खते जीती रहो, रक्षक तुम्हारे हैं धनी। क्या हम यह चाहते हैं कि सारा शिक्षण जॉब ओरिएंटेड हो? और जॉब से मतलब क्या है? दूसरा दे नौकरी। जॉब से, एम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब यह नहीं है, उद्योग नहीं है। एम्प्लॉयमेंट से हमारा मतलब है जॉब। तो डू यू वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस कंट्री इंटू ए नेशन ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज? सारा सरकारी नौकरों का देश हो जाए, कहीं से तो आरंभ हो। मैं 1948 से महाराष्ट्र के ब्राह्मणों से यह कहता आया हूं कि तुम नौकरियों का बहिष्कार करो, लेकिन ब्राह्मण, वो तो ब्राह्मण कोई विस्पृहत होता नहीं है, दक्षिणा और भोजन का प्रेम ही होता है, तो उसने नहीं माना। अब तक मेरा कहना नतीजा यह है कि महाराष्ट्र के राजनैतिक जीवन में अब ब्राह्मण कहीं नहीं, और दक्षिण में तो द्रविड़ मुन्नेत्र का स्वामी है। जो निकाला जाता है उसकी शक्ति क्षीण होती है, जो निकल जाता है उसकी शक्ति बढ़ती है। मेरिट इस चीज में है, सांस्कृतिक विकास भी इसमें है और गुणवत्ता भी इसमें है कि मैं छोड़ रहा हूं। ये तुम्हारे लिए मैदान खाली है। अब टेक्निकल कुछ बातें मैं बिखरी हुई ले रहा हूं, क्योंकि बिखरी हुई यहां पर सब चर्चा हुई है। टेक्निक किसे कहें? असल में तो इस देश में जो बहुजन है वही टेक्निकल रहे। बढ़ई, लोहार, राज, कारीगर, चित्रकार, लेकिन ये शिक्षण से वंचित रहे। अब जरा मैं अलग कर रहा हूं आपको, इसमें ये नहीं होना चाहिए किसी तरह का आश्चर्य। शिक्षण और कारीगरी दो अलग चीजें हैं, इनको अब हम मिलाना चाह रहे हैं और वो ठीक भी है। शिक्षण सांस्कृतिक है, कारीगरी व्यावसायिक है, फंक्शनल है। एंड फंक्शनलिज्म इज कलर ब्लाइंड टू ऑल कल्चरल वैल्यूज। व्यवसायवाद में से कोई सांस्कृतिक विकास नहीं होता है, इसलिए हमारे सारे व्यवसायों की जातियां बन गई, उनमें से सांस्कृतिक विकास नहीं हो सका। तो जिसे आप आज टेक्निकल एजुकेशन कहते हैं, क्या वो व्यावसायिक है कि उसमें सांस्कृतिक हिस्सा भी है? अगर सांस्कृतिक हिस्सा है तो उस सांस्कृतिक हिस्से को जब टेक्निक के साथ आप मिलाते हैं तो जो लोग सांस्कृतिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं उनको लिए जगह देना हमारे सांस्कृतिक विकास का लक्षण होगा। सभ्यता किस चीज में है? यशवंत भाई ने कहा कि आप यहीं बैठ जाइए कुर्सी पर, और स्वयं नीचे बैठ रहे हैं, ये संस्कृति है। लेकिन ट्रेन में ये अगर फर्स्ट क्लास की सीट खरीद ले और मैं पहुंच जाऊं तो उठेंगे नहीं, क्योंकि वहां बाजार आ गया ना, संस्कृति है ही नहीं वहां। बाजार और संस्कृति एक जगह रह ही नहीं सकती है। तो मित्रों, ये बाजार जा रहा है शिक्षण में, बाजार में संस्कृति नहीं आ रही। इस कॉन्टेक्स्ट को भी तो हम समझें कि बाजार के मूल्य शिक्षण में और मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं, जैसे चौराहे के मूल्य पार्लियामेंट में प्रवेश कर रहे हैं, ये आप देख ही रहे हैं रोज। तो इस मूल्य को अगर आप हटाना चाहते हैं, कल मैंने इसे नारायण से कहा था कि एक वाक्य है कालिदास का किसी नाटक में, सब तो मुझे याद नहीं रहता, यस्य आगमः केवलं जीविकायै तम ज्ञानपण्यम वणिजम वदन्ति। जीविका लिए ही, जीविका के लिए ही जिसका ज्ञान है उस ज्ञान के व्यापारी को बनिया कहते हैं। तो अब तो मार्केट ओरिएंटेशन है इस वक्त मनुष्य का, बहुत से संस्करण मनुष्य के हुए, हमारे देश में उसका मार्केट ओरिएंटेशन है। तो ये जो गुणवत्ता आज कही जा रही है मार्केट के है, मैं दूसरी गुणवत्ता की बात कर रहा हूं, सांस्कृतिक गुणवत्ता जिसमें मनुष्य मनुष्य के नजदीक आएगा, उस माँ की गुणवत्ता जिसने कहा कि बच्चे के दो टुकड़े मत करो, इसी को बच्चा दे दो, उसके घर अगर सुखी रहेगा तो मैं खुश हूंगी। क्या इस तरह की कोई जमात निकल सकती है इस देश में? इसकी आवश्यकता है। ये गांधी मार्क्स वगैरह सारे नाम छोड़ दीजिए, ये चिप्पियां है लेबल्स हैं, इनका क्या करना है? लेबल से परे एक मनुष्य है जिस पर कोई लेबल नहीं है। क्या इस देश में ऐसी जमात यंग मेन की, तरुणों की निकल सकती है जो ये कहे कि हमको ये लोव्स एंड फिशेस नहीं चाहिए? ये बांट लो आपस में। कल जीना भाई ने हमारे, ये जीना भाई नहीं वो दूसरे, एक चित्र एक नक्शा खींचा कि 30% तो जनरल हो और फिर पूरा का पूरा किसका हो, तो बांटा इतना अछूतों का, इतना आदिवासियों का, इतना बख्शी पंच वालों का, तो ये हो जाएंगे 60%, फिर बच्चे 40%, तो 10% और कौन हो, वो अर्थ जो आर्थिक दृष्टि से गरीब है वो, तो 40-50 ये हो जाते हैं, 70, फिर 30 वो बच जाते हैं जनरल वाले। ये हमारे देश की हालत है। माइनॉरिटीज को अगर अलग कर दो तो बचता ही कुछ नहीं, शून्य। ये देश प्याज जैसा है, छिलके उतारते जाओ तो छिलके ही छिलके हैं, आखिर में कुछ नहीं रह जाए। प्याज की शक्ल का देश है। कौन मेजॉरिटीज में है? ब्राह्मण माइनॉरिटी में है, हर जाति माइनॉरिटी में है और हर भाषा माइनॉरिटी में है, तो क्या होगा? क्योंकि अब तो भाषाओं का नहीं, अब लिपियों का भी झगड़ा हो गया है और बोलियों का भी झगड़ा हो रहा है। इस तरफ नहीं जाना चाहिए, राइट अबाउट टर्न की आवश्यकता। और शिक्षित मनुष्य में त्याग की बुद्धि आनी चाहिए। गांधी के जमाने में अल्प त्याग की आवश्यकता थी, बहुत अल्प त्याग। मित्रों, हम लोगों ने जो त्याग किए और जो कष्ट सहे वो कुछ भी नहीं थे, मैं आपसे कहना चाहता हूँ। एक तो अंग्रेज कुछ सभ्य भी था हम लोगों की अपेक्षा, तो उसके जेल खाने में भी उतने कष्ट नहीं हुए, बाहर भी उसने उतने कष्ट नहीं दिए। सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि भारत के शोषण पर सबसे पहली साम्राज्य के खिलाफ जो पुस्तक लिखी वो एक अंग्रेज ने लिखी, उसके बाद दादा भाई ने लिखी। दादा भाई की पुस्तक तो प्रसिद्ध है, लेकिन उस अंग्रेज की पुस्तक प्रसिद्ध नहीं है भारत वर्ष में। इस देश में ऐसे अंग्रेज आए जिन्होंने भारतवर्ष की तरफदारी की, इस देश में ऐसे सवर्ण चाहिए जो अस्पृश्यों की तरफदारी करेंगे, चाहे वो बहुसंख्य हो चाहे अल्पसंख्य हो, वो अस्पृश्य तो हैं। वो कलेक्टर भी हो गया हो तो अपने गांव में वो ब्राह्मणों के मोहल्ले में मकान नहीं बना सकता, बाहर भले ही बना ले। ये अगर परिस्थिति है तो मित्रों सिद्धांत के नाम पर मनुष्य को दूर मत कीजिए, इतना ही मेरा कहना, इससे अधिक मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूं। मेरिट एक सिद्धांत है, मनुष्य प्रत्यक्ष है, जिसमें कम मेरिट है उसको अपनाइए और थोड़ी मेरिट के हानि हो तो उसे सहन कर लीजिए। जो किया गया है अब देखिए ना, ब्राह्मण आपके गुजरात को छोड़ दीजिए, मैं महाराष्ट्र की बात कर रहा हूं, नर्मदा के दक्षिण में निरक्षर ब्राह्मण नहीं है, नर्मदा के उत्तर में निरक्षर ब्राह्मण वगैरह सब हैं। ब्राह्मणों में किशन और करसन नाम आप नहीं देखेंगे महाराष्ट्र में, यहाँ किशन त्रिवेदी है लेकिन महाराष्ट्र में कृष्ण ही नाम होगा, किशन और ये नाम नहीं होंगे, ये पेटनेम होंगे, कुशा किशा ये हो जाएंगे लेकिन नाम कृष्ण ही रहेगा, करसन दास वगैरह नहीं। लेकिन इन नाम हम सह रहे हैं, इतना ही नहीं तो इनको इनका प्रचार भी कहे, वो नाम हम ले भी रहे हैं, तो अब गुणवत्ता की हानि तो थोड़ी हुई है, लेकिन मैं ऐसे गुणवत्ता की हानि नहीं समझता क्योंकि मनुष्य नजदीक आ गए एक दूसरे के। तो इन अछूतों को भी लाइए इसी तरह से, सिद्धांतों को मत आने दीजिए रास्ते में। सबसे महान सिद्धांत यूनिटी ऑफ लाइफ है, मनुष्य को मनुष्य के नजदीक लाइए, सारे जीवों को एक दूसरे के नजदीक लाइए, इससे और कौन सा बड़ा सिद्धांत हो सकता है दुनिया में, इससे बड़ा कोई अध्यात्म भी नहीं है मित्रों। तो यह कुछ बातें थी जो आप लोगों की सेवा में मुझे निवेदन करनी थी। इसमें विद्यार्थी सही है या सरकार सही है, इतना ये दो टूक मामला नहीं है। एक चीज आपसे जो कहना चाहता था वो ये, जितना अध्ययन मैंने इसका किया ये ऐसा दो टूक मामला नहीं, एक पक्ष में न्याय है और एक पक्ष में अन्याय है, दोनों ने दोनों कहते हैं, विद्यार्थी भी कहते हैं कि अपनी तरफ से जितना झुक सकते थे उतना हम झुके हैं, सरकार भी कहती है कि हम जितना झुक सकते थे उतने झुके हैं, फिर भी खाई कायम है, तो क्यों है? अब ये मारपीट से होगी खाई, मारपीट से दब सकते हैं, समस्या हल नहीं हो सकती। पुलिस की मारपीट ज्यादा होगी तो हम दब जाएंगे यानी लोग दब जाएंगे, लोगों की मारपीट ज्यादा होगी तो सरकार दब जाएगी, जैसे वो चिवन भाई के मामले में हुआ था मधुराई चले जाए, और बड़ा उसका बोलबाला, यहाँ तक कि जेपी ने भी कहा कि मुझे इंस्पिरेशन गुजरात से मिला, मुझे तो तब भी नहीं मिला था अब भी नहीं मिल रहा, थोड़ा बहुत आसाम से मिल रहा है, वहां देख रहा हूं कि गांधी की कुछ चिंगारी तो है, यहाँ तो गांधी को विद वेंजेंस श्राद्ध हो रहा है। तो यहाँ ये चीज है, इसको आप इस परिभाषा में मत सोचिए, ये न्याय अन्याय का मुकाबला नहीं है, ये मुकाबला दोनों तरफ से कहीं पर अड़ जाने का, तो मैं सरकार से भी कहूंगा कि आप अपनी तरफ से एक कदम आगे आइए। इस झुकने में बड़प्पन ही है, कोई इसमें आपके सत्व की हानि नहीं है। विद्यार्थियों से भी कहूंगा एक कदम आगे बढ़िए। आपके बनने में भी आप ये न समझिए कि आपका गौरव क्षीण होता है। ये जो मनुष्य का स्वाभिमान है कि नहीं, ये सबसे उसको अपमानित करने वाली चीज है। जिसे हम स्वाभिमान कहते हैं वो अपमानित करता है आपको, स्व ही स्व रह जाता है। दूसरी चीज, ये हिंसक प्रतिकार भी नहीं है, ये अहिंसक प्रतिकार भी नहीं है, ये दंगा है जिससे जनता भयभीत होती है, आतंक फैलता है। राज्य का आतंक जिस तरह का होता है, उस तरह का भीड़ का भी आतंक होता है। ये भीड़ का आतंक है, इस भीड़ के आतंक का मुकाबला करने के लिए सारे सभ्य लोगों को एक हो जाना चाहिए। इसमें हम किसी की मदद नहीं कर रहे हैं और किसी का विरोध भी नहीं कर रहे हैं। हम इतना ही कहते हैं कि आतंक को मिटाइए, दंगों का शमन कीजिए, एक दूसरे के साथ बैठिए। हमारी जरूरत हो तो हम आएंगे, जरूरत ना हो तो जैसे हमें वोट से मतलब नहीं है वैसे आपकी प्रतिष्ठा भी हमको नहीं चाहिए। आसन आपके लिए बिछा सके इतना हमको करने दीजिए, और ये भी नहीं मानना है तो आप जाने। गांधी ने कहा था इरविन से कि शायद हो सकता है कि जो आग भड़केगी उसमें मैं भी जल जाऊं, तो ये हो सकता है, कौन जानता है। ये दूसरी बात आप लोगों से मैंने निवेदन की। और तीसरी बात, इस समाज के पोत को समझ लीजिए। बहुसंख्या और अल्पसंख्या शब्द हैं, इन शब्दों के धोखे में मत जाइए। हिंदुओं की बहुसंख्या फिक्शन, केवल एक आंकड़ा है। इतनी जातियां हैं कि यह शतखंडित और सहस्रखंडित समाज। इसलिए आरक्षण कोई सिद्धांत की बात नहीं है मित्रों। वो कामत ने भी कहा नहीं होना चाहिए, कृपाला जी ने, नानी जी ने भी कहा, ये दोनों मेरे लिए प्रिय आदरणीय व्यक्ति हैं, लेकिन बात उनकी जड़ तक नहीं जाती है। जड़ यह है कि अछूत जिसको मिल गया है उससे अगर कोई चीज आपको वापस लेनी है तो उसकी सम्मति से लीजिए। इसमें कोई सिद्धांत की बात मैं नहीं कह रहा हूं, इतना ही कह रहा हूं कि जब तक वो कहता है कि चाहिए तब तक रहने दीजिए, कोई हानि अधिक नहीं होने वाली है। और तीसरी बात आपसे कही कि ये रेड क्रॉस का काम नहीं है जो आप कर रहे हैं, रेड क्रॉस से आगे का काम। आप शांति के लिए, और ये डायनेमिक है, ये शांति गतिशील है, पॉजिटिव है, भावरूप है। जिस शांति का जप आप कर रहे हैं वो पुरानी शांति नहीं है। ये तीन चीजें आप लोगों के सामने मुझे, आपके चरणों में मुझे निवेदन करनी थी। आप इनका विचार कीजिए। आप सब क्रियाशील व्यक्ति हैं, मैं तो क्रियाशील नहीं रहा हूं और अब तो रहने की कोई संभावना भी नहीं है। आपके शहर में आया गफलत में इसमें शामिल हो गया। अधिक दिन इस गफलत में रहूंगा भी नहीं, आया चला जाऊंगा, लेकिन मैंने सोचा कि आप लोगों के चरणों में कुछ चीज़ें ऐसी छोड़ जाऊं जो आप सोचें, जिनको ये बुनियादी चीज़ें हैं, निवेदन है कि आप इनको सोचिए। सबने मुझे समय दिया, आप लोगों ने इतने ध्यान से ये बातें सुन ली, आप सबका बहुत बहुत कृतज्ञ हूँ और सबको नमस्कार।
विराम